प्रस्तुत है आज का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। स्वतंत्र एसीटी सीनेटर डेविड पेकॉक ने दोनों प्रमुख दलों पर तीखा हमला बोला है और उन पर बहुराष्ट्रीय गैस दिग्गजों को ऑस्ट्रेलियाई जनता को बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक गैस विदेशों में भेजी जा रही है, जबकि स्थानीय लोगों को अपने देश में बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को एक घोटाला बताया है। वहीं मेलबर्न के सीबीडी में टोल ग्रुप के 3 मालवाहक ठिकानों पर इसराइल विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ किए जाने के बाद तलाशी अभियान जारी है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने हथौड़े से कांच के दरवाजे तोड़े थे और इमारतों पर लाल रंग छिड़का था। ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक वीडियो में नकाबपोश लोग कॉलिन स्ट्रीट पर हमले करते दिखाई दे रहे हैं। इस फुटेज में वे लॉजिस्टिक दिग्गजों पर हथियार ले जाने का आरोप लगा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे सुनाई दे सकते हैं। ऐसे में यहूदी समुदाय ने इन घटनाओं की निंदा की है। वहीं मानहानि विरोधी आयोग के अध्यक्ष दवीर अब्रामोविक ने चैनल 7 को बताया कि इस धमकी के चल रहे अभियान ने कई लोगों को असुरक्षित महसूस कराया है। इस रविवार यानी कि 3 अगस्त को सिडनी हार्बर ब्रिज पर प्रदर्शन की योजना बना रहे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे इसे रोकने की किसी भी कोशिश का विरोध करेंगे। उनका उद्देश्य गाजा में भुखमरी की ओर ध्यान आकर्षित करना है। हालांकि न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिंस ने कम समय की सूचना और यातायात व्यवस्था का हवाला देते हुए तुरंत इस विरोध प्रदर्शन का विरोध किया है। वहीं कार्यकर्ताओं का तर्क है कि ये ब्रिज ऑस्ट्रेलिया का एक शक्तिशाली प्रतीक है और वे सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को स्थगित करने को तैयार हैं। मिंस ने पुलिस के समूह के साथ मिलकर एक वैकल्पिक मार्ग पर काम करने का अनुरोध किया है, लेकिन आयोजकों का कहना है कि वे उन्हें रोकने से किसी भी कानूनी प्रयास को चुनौती देंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सऊदी अरब और फ्रांस के नेतृत्व में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नेताओं से इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के लिए द्विराज्य समाधान का समर्थन करने का आग्रह किया है। न्यूयॉर्क में आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के 50 मंत्री एकत्रित हुए हैं, जिसका उद्देश्य द्विराज्य समाधान के लिए एक रोडमैप तैयार करना है, जो कि इसराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता प्रदान करेगा। आपको बता दें कि इसराइल और अमेरिका दोनों ने इस बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया है, जिसमें कि 125 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के साथ शांति समझौता करने के लिए रूस को 10 से 12 दिन का समय दिया है, जिससे उनकी मूल 50 दिवसीय समय सीमा में भारी कमी आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि प्रगति की कमी को देखते हुए पूरे कार्यकाल तक इंतजार करने का कोई कारण नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर यूक्रेन के साथ कोई शांति समझौता नहीं हुआ तो रूस को और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। वहीं स्वतंत्र राजनेता एआई तकनीक को गैरकानूनी घोषित करने वाले नए कानून पर जोर दे रहे हैं, जिसका इस्तेमाल बाल शोषण सामग्री बनाने में किया जा सकता है। कर्टन की सांसद केटी चेनी ने एक निजी विधेयक पेश किया है, जिसमें ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को अपराध घोषित किया जाएगा जो कि उपयोगकर्ताओं को किसी व्यक्ति की तस्वीरें डालने और उन्हें यौन रूप से विकृत करने के लिए जेनरेटिव एआई का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। ये विधेयक एआई द्वारा सुगम बाल शोषण पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आया है, जिसमें कि तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया गया था। बात करें भारत की, तो दिल्ली एनसीआर में आज यानी मंगलवार सुबह से ही मौसम ठंडा बना हुआ है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मंगलवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे और गर्जन वाले बादल बनने और बिजली चमकने के आसार हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि कुछ जगहों पर हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है, साथ ही अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 डिग्री एवं 24 डिग्री तक रहेगा। विभाग ने बताया है कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी के तेवर हल्के रहने और तापमान में गिरावट भी बने रहने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।